हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 अगस्त 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। आज 5 अगस्त से महाराष्ट्र में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल होने जा रही है, जिसके चलते मुंबई समेत पूरे राज्य में ओपीडी सेवाएं आज बंद रहेगी। राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों की ओपीडी सेवाएं भी बंद रहेगी। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से आज ये हड़ताल का ऐलान किया गया है। अब ये हड़ताल क्यों की जा रही, तो इसके पीछे डॉक्टरों की कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और रिपोर्ट आ रही कि कल 6 अगस्त से इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हो सकती है। वहीं आज 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर ईपीएस 95 पेंशनर्स की तरफ से भी राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया है और इस प्रदर्शन का मकसद केवल पेंशन बढ़ाने की मांग ही नहीं है, बल्कि देश भर के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सम्मानजनक जीवन, सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा का सवाल है। एक तो पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग ये है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रूपए किया जाए और उस पर महंगाई भत्ता यानी डीए भी दिया जाए। वर्तमान में बड़ी संख्या में पेंशनर्स को औसतन करीब 1,171 रूपए पेंशन मिल रही है, तो इसको बढ़ाने की मांग है कि कम से कम 7,500 रूपए मंथली पेंशन की जाए। यही वजह है कि पेंशन भोगी संगठन देशव्यापी प्रोटेस्ट करेगा आज। पेंशनर संगठन समिति की तरफ से ये कुछ प्रमुख मांगे की जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 1,100 से बढ़कर 7,500 हो जाएगी मिनिमम पेंशन। तो आज 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर हड़ताल के बाद देखते हैं सरकार की तरफ से इस पर क्या फैसला लिया जाता है। इसके अलावा वेतन सीमा को भी 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रूपए करने की मांग है। तो इस आंदोलन को लेकर आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। और वैसे पीएफ खाता वालों के लिए एक और अपडेट आ रहा। ईपीएफओ की तरफ से नोटिस जारी किया गया, आज 5 अगस्त को बंद रहेगी कुछ सेवाएं। उमंग ऐप के जरिए भी नहीं होंगे ये काम। दरअसल ईपीएफओ की तरफ से नोटिस जारी किया गया कि आज बुधवार को शाम 6 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक ईपीएफओ का ई ऑफिस ऐप पूरी तरह से बंद रहेगा। तो इस ऐप के जरिए कोई काम नहीं हो पाएगा। लगभग 3.5 घंटे तक ये डिजिटल सेवाएं निरस्त रहेगी। क्यों बंद की जा रही, तो ईपीएफओ अपने सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड कर रहा है, तो इसके बाद कई नई सेवाएं भी शुरू हो जाएगी, लेकिन इस टाइमिंग तक कई सारी सुविधाएं बंद रहेगी, है ना। और वहीं खबर है, राजस्थान बिजली विभाग में 2005 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें आज 5 अगस्त से ही आवेदन शुरू होंगे। अलग अलग पोस्टों पर ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। और मौसम विभाग की तरफ से बड़ा अपडेट देखिए। आज 5 अगस्त को उत्तर भारत के 7 राज्यों में अति भारी बारिश की चेतावनी है। 20 से ज्यादा जिलों में मौसम का अटैक देखने को मिलेगा। आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वहीं हिमाचल प्रदेश में मणि महेश यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज 5 अगस्त से शुरू होंगे। हर दिन 5,000 श्रद्धालुओं को अनुमति मिलेगी। इस ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं श्रद्धालु। और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आज 5 अगस्त को प्रदर्शन की रणनीति बनाई जाएगी। सांसद और इंडिया गठबंधन के नेताओं को विरोध प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं 5 अगस्त को देश के कई राज्यों में स्कूल वगैरह भी बंद रहेंगे। भारी बारिश के चलते आज स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिला प्रशासन की तरफ से। और नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद अब सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी अपनी अगली रणनीति बनाने के लिए तैयार है। आज 5 अगस्त को संभाजी नगर में कोर कमेटी की बड़ी बैठक भी होगी। और वहीं राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। 8 साल से तबादलों पर जो रोक लगी हुई है, तो इस मामले को लेकर तृतीय श्रेणी के शिक्षक सरकार से अब आर पार की लड़ाई का आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। आज 5 अगस्त को राजधानी जयपुर से ये महा आंदोलन का ऐलान किया है संघर्ष समिति की तरफ से। वहीं उत्तर प्रदेश में भी अपनी मांगे पूरी न होने के चलते 5 अगस्त से आंदोलन की चेतावनी दी है यूपी लेखपाल संघ की तरफ से। राजस्व परिषद को यह ज्ञापन सौंपा गया है और आज 5 तारीख को कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। संघ ने कई मांगे उठाई है, जैसे पदोन्नति, संसाधन वगैरह वगैरह। और रोजगार मेले पर अच्छी खबर आ रही, नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आज 5 अगस्त को रोजगार मेला लगने जा रहा है। 10वीं 12वीं ITI ग्रेजुएट सभी उम्मीदवारों के लिए मौका होगा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में ये जॉब फेयर का आयोजन होगा। और वहीं खबर है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना आज 5 अगस्त को सत्ता से हटने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आएंगी और पहली बार मीडिया के सामने अपना संबोधन देंगी। वो बांग्लादेश वापसी की रणनीति पर बड़े ऐलान करेगी। आपको बताऊंगा, बांग्लादेश में जब सत्ता पलट हुआ था उसके बाद से वो भाग कर भारत आई हुई है, तो भारत आने के बाद पहली बार पिछले 2 सालों में वो मीडिया से बातचीत करेगी और कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेगी। तो शेख हसीना के भाषण पर रोक लगाने से भारत ने इनकार कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश ने ये मांग की थी कि शेख हसीना को पब्लिकली स्पीच ना देने दिया जाए भारत द्वारा, लेकिन भारत ने मना कर दिया ये कहते हुए कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज 2 साल बाद वो मीडिया को संबोधित करेगी ऐसा। और खबर है, बैंक लोन की ब्याज दरें घटेगी या बढ़ेगी, इस पर भी आज रिजर्व बैंक की तरफ से फैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि एमपीसी की मीटिंग का आज अंतिम दिन है और 5 अगस्त को आरबीआई गवर्नर द्वारा खुद फैसलों की घोषणा की जाएगी। वहीं पंजाब में बेनतीजा रही सरकार और किसानों की बैठक, आज 5 अगस्त को स्पीकर के घर का ऐलान किया है। किसान की तरफ से अपनी कुछ मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और बिहार में भी शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर ऑनलाइन पोर्टल खुल चुका है। 5 अगस्त तक के लिए आवेदन कर सकते हैं, शिक्षा मंत्री की तरफ से यह घोषणा की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के राजनीति में महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया, आज 5 तारीख को अनुच्छेद 370 को बहाल करने की मांग को लेकर पीडीपी प्रदर्शन करेगी और माफी भी मांगी उन्होंने। और झारखंड में रिम्स 2 के निर्माण का विरोध किया गया, 5 अगस्त से पद यात्रा निकालेंगे आदिवासी संगठन, मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की गई है। साउथ के एक्टर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय की सरकार 5 अगस्त को पेश करने जा रही है अपना पहला बजट। ऐसे में आज पता चलेगा कि आखिर तमिलनाडु की जनता को क्या क्या मिलेगा। टीवीके सरकार का ये पहला पूर्ण बजट होगा, वित्तीय चुनौतियों पर भी नजर रहेगी। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे दोस्तों, और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, पाकिस्तान से आजाद हुआ बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान ने तो अपना स्वतंत्रता दिवस भी घोषित कर दिया है। बलूचिस्तान का कहना कि आने वाली 11 तारीख को 11 अगस्त को अपनी आजादी का दिन मनाएगा बलूचिस्तान, और उसने दुनिया से भी ये अपील की है कि उसे अलग देश के रूप में मान्यता दें और पाकिस्तान के चंगुल से आजाद माने। दरअसल ये जो बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान का ही एक प्रांत है, राज्य है, लेकिन इस अशांत प्रांत ने अब अपने आप को खुद को अलग वतन घोषित करके अपने स्वतंत्रता दिवस की तारीख भी बता दी है। वैसे पाकिस्तान में आपको बताऊंगा पीओके में भी अभी तक विरोध प्रदर्शन की वजह से हंगामा मचा ही हुआ था। इस बीच पाकिस्तान सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है, बलूचिस्तान राज्य ने अपनी आजादी का दिन घोषित कर दिया 11 अगस्त को, और दुनिया भर में इसे बड़े स्तर पर मनाने की अपील भी की है। ये देख सकते हैं बलूच पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया इस बारे में। वैसे शांत रहने वाला पीओके अभी पाकिस्तान के लिए काफी परेशानी बना हुआ है, 12 रिजर्व सीटें भी खत्म करना चाहते हैं पीओके के प्रदर्शनकारी, लेकिन पाकिस्तान सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। और एक भारत के मुद्दे से जुड़े अपडेट पर भी खबर देखिए, राष्ट्रहित में जो भी जरूरी होगा वो हम करेंगे, पाकिस्तान की 250 चीनी होवित्जर तैनाती पर भारत ने करारा जवाब भी दिया। पाकिस्तान द्वारा सीमा पर ये कुछ तोपों की तैनाती की गई है, तो उस पर भारत ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए ये बयान दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, भारत में जेएनजी की एक और बड़ी जीत हुई, अब 18 साल की उम्र में ही जेएनजी युवा संभाल सकेंगे बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल सरकार की तरफ से नियमों में बदलाव किया जा रहा, अब सिर्फ 18 साल की उम्र में ही भारत के युवा जो है वो कंपनियों के एमडी डायरेक्टर वगैरह बन पाएंगे। कंपनियों का ये कानून बदलने जा रहा, स्टार्टअप्स के लिए भी ये सबसे बड़ी खबर है। बात कुछ यूं है कि भारत की संसद की संयुक्त समिति ने कंपनीज एक्ट में एमडी और पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति की न्यूनतम उम्र जो अभी 21 साल है उसे घटाकर 18 साल करने का ही सुझाव दिया है, और अधिकतम उम्र को भी 70 से 75 करने की सिफारिश की है। तो अगर सरकार इस सुझाव को मान लेती है और कानून में बदलाव हो जाता है तो ये जेएनजी युवाओं के लिए एक और बड़ी जीत होगी भारत में। वहीं संसद में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ा बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पास हो चुका है। इस बिल के बाद अब जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन में एक भी गलती हुई तो कोर्ट जाना पड़ेगा। राज्यसभा ने इस बिल को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। हालांकि पुराने कानून में पूरी तरीके से कोई बदलाव नहीं किया गया है, पहले की तरह जन्म मृत्यु की सूचना 21 दिन के अंदर देने पर सामान्य रूप से रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, लेकिन इससे ज्यादा देरी होने पर अब मजिस्ट्रेट कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। क्या है नया विधेयक देख सकते हैं आप, इस बारे में ज्यादा जानकारी भी है। चलिए अगली खबर देखिए, आप मोबाइल ऐप से मिलेगा निर्माण श्रमिकों को काम, उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ डिजिटल लेबर चौक प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों को रोजगार और सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़ने के उद्देश्य से डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसके माध्यम से श्रमिक वगैरह जॉब पा पाएंगे, इस प्लेटफॉर्म पर उनको काम के बारे में नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए, नई गाड़ी खरीदने से पहले जान लें सुप्रीम कोर्ट का यह नया आदेश, वरना पेट्रोल मिलना भी दुर्भर होगा। बात कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट ने नई कारों और दोपहिया वाहनों के इंश्योरेंस को लेकर ये नए दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि अगर किसी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो उसे अब पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारत की इंश्योरेंस नियामक जो है इरडा, उसको भी इस बारे में आदेश जारी किया, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब नई कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा 3 साल की जगह 4 साल और नए दोपहिया वाहनों के लिए भी 5 साल की जगह 6 साल का लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट का कहना कि अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस पर भी बीमा कंपनी कोई दुर्घटना मुआवजा नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि सड़क दुर्घटना होती, कोई रोड एक्सीडेंट होता है, उस समय अगर गाड़ी वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो बीमा कंपनी मुआवजे के लिए जिम्मेदार भी नहीं होगी। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पे एंड रिकवर का सिद्धांत भी लागू किया और यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। चलिए अगली खबर देखिए, डाबर कंपनी ब्रांड के शहद और घी समेत अन्य खाद्य उत्पादों पर अब 100% नेचुरल लेबल का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। दरअसल FSSAI यानी भारत सरकार के खाद्य विभाग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहा गया कि डाबर के 100% शुद्ध दावे वाले प्रोडक्ट पर अब रोक रहेगी, और FSSAI के शहद घी समेत कई सामानों को बेचने पर भी बैन लगा दिया और 15 दिन में इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। ये देख सकते हैं भारत सरकार के खाद्य विभाग की तरफ से कंपनी को क्या नोटिस जारी किया गया इस बारे में, और डाबर के शहद घी समेत कई सारे प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया, और भी किन किन प्रोडक्ट पर पाबंदी लगाई गई है इस बारे में भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। दरअसल खाने पीने की चीजों को लेकर FSSAI के नियम क्या कहते हैं कंपनियों से जुड़े, देख सकते हैं आप जानकारी। वहीं FSSAI ने एक और बड़ी कार्यवाही की, मात्र ड्रिंकिंग वाटर का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया। वेनोलेक्स फोर्टे कंपनी पर भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू हो चुका है। नियमों के उल्लंघन के खिलाफ ये सख्त कार्यवाही की गई है खाद्य विभाग की तरफ से। और अगला अपडेट देखिए, भारत सरकार ने मेटा कंपनी के पब्लिक पॉलिसी हेड को भी नोटिस जारी किया। हाल ही में आपको बताऊंगा, कुछ दिनों पहले पीएम मोदी की एक इंस्टाग्राम रील्स के वीडियो को हटा दिया गया था, हालांकि उसके बाद वापस डाल दिया। लेकिन इस मामले को लेकर अब संसदीय कमेटी बोले कि मार्क जुकरबर्ग पीएम मोदी से माफी मांगे हैं और सहूलियतें वापस लेने की भी चेतावनी दी गई है। इसके अलावा भी सरकार ने मेटा कंपनी की ग्लोबल टीम को भी समन भेजा। यौन शोषण कंटेंट कंट्रोल में चूक के मामले को लेकर नेताओं और VIP अकाउंट्स पर गलत कार्यवाही पर जवाब भी मांगा है। और इस मामले में आज और कल 5-6 अगस्त को अहम बैठक होने जा रही भारत सरकार और मेटा कंपनी की ग्लोबल टीम के बीच। और बीते दिन दोस्तों व्हाट्सएप यूजर्स को भी एक बड़ी दिक्कत हो गई। हजारों व्हाट्सएप अकाउंट्स अचानक बंद हो गए, जिनको मैसेज आया कि अंडर रिव्यू, बिना वार्निंग के सभी फीचर्स भी ब्लॉक कर दिए गए। हालांकि फिर कंपनी बोली कि कभी कभी गलती हो जाती है। और वहीं व्हाट्सएप से जुड़ा एक और अपडेट ये है कि भारत में व्हाट्सएप एज वेरिफिकेशन भी टेस्ट कर रहा है। कुछ चुनिंदा यूजर्स के साथ नया फीचर शुरू हुआ। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों के पालन की तैयारी की जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए, 6 साल बाद फिर से UPI पेमेंट पर फीस लग सकती है। वैसे तो साल 2020 में सरकार की तरफ से MDR शुल्क के फैसले को हटा दिया गया था, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने पेमेंट एक्ट में बदलाव का एक प्रस्ताव भी रखा है। और इस प्रस्ताव के तहत जो UPI पेमेंट अभी फ्री होता है, तो हो सकता है भविष्य में आपको UPI के इस्तेमाल करने पर चार्ज देना पड़ सकता है। हालांकि अभी ये चार्ज लागू नहीं होगा। 2020 में तो सरकार ने इस प्रस्ताव को हटा दिया था, चार्ज वाले प्रस्ताव को, UPI पेमेंट को फ्री रखा था, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में इस पर चार्ज लगा दिया जाए ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, पेट्रोल डीजल और ATF के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में सरकार ने बढ़ोतरी की है। एक्सपोर्ट बैलेंस करने के लिए ये फैसला लिया गया है, सरकार का ये कहना है। हालांकि इस फैसले का असर देश में पेट्रोल डीजल के दाम पर नहीं होगा, लेकिन तेल कंपनियों के लिए अब ऑयल एक्सपोर्ट करना महंगा होगा। कितना महंगा होगा, पहले कितना टैक्स था और अब कितना बढ़ा दिया है, जानकारी आप देख सकते हैं इस टेबल में। तो इससे देखा जाए तो भारत में और सप्लाई बढ़ेगी, थोड़ी पेट्रोल डीजल की कमी दूर होगी ऐसा। चलिए अगली खबर आ रही, 15 अगस्त से ही ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा। 23 गंभीर यातायात उल्लंघनों के चालान पर अब सीधे कोर्ट जाना पड़ेगा। जी हां, केंद्र सरकार के सड़क सुरक्षा और परिवहन मंत्रालय की तरफ से एक नई अधिसूचना जारी की गई है, जिसके मुताबिक 23 प्रकार के गंभीर यातायात नियमों के उल्लंघन के मौके पर जुर्माना वसूलने के बजाय सीधे न्यायालय यानी कोर्ट भेजा जाएगा अपराधियों को। जिसमें कौन कौन से नियमों का उल्लंघन है, इस बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इन सभी रूल्स के उल्लंघन पर अब आपका चालान नहीं कटेगा, बल्कि सीधा आपको कोर्ट जाकर अपनी गाड़ी छुड़ानी पड़ेगी ऐसा। और सोना चांदी के भाव पर खबर देखिए, चांदी के भाव में 1348 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अभी चांदी का प्राइस 2,19,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। वहीं 10 ग्राम सोना भी 309 रुपए महंगा होकर अभी 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं बैंक खाता वालों के लिए एक और अपडेट आ रहा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंक FD को लेकर भी नए नियम जारी किए हैं। अब स्मॉल फाइनेंस बैंकों को ब्याज दर की पूरी जानकारी अपने ग्राहकों को पहले ही देनी होगी। टोटल 5 बड़े बदलाव किए गए RBI ने FD यानी फिक्स डिपोजिट के नियमों को लेकर। और ये जो नए नियम है, रेगुलेशन है, ये 1 अक्टूबर 2026 से ही लागू माने जाएंगे। RBI की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश भर के प्रमुख स्मॉल फाइनेंस बैंकों में फिक्स डिपोजिट कराने वाले निवेशकों के लिए ये नई गाइडलाइंस जारी की है। इन नियमों में क्या क्या प्रावधान जारी किए गए रिजर्व बैंक की तरफ से देख सकते हैं आप जानकारी। और इससे ग्राहकों को ये फायदा होगा कि सभी ब्रांच पर अब एक समान ब्याज दरें मिलेगी, बल्क डिपोजिट के लिए अलग ब्याज दरों की इजाजत होगी, और FD निवेशकों पर भी इस नियम का क्या असर पड़ेगा, इस बारे में भी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 2 महीने बाद चंपत राय दिखे, और अयोध्या में उन्होंने उंगली दिखाकर मीडिया में कैमरों को बंद करवाया, बोले कि मरते दम तक यहीं रहूंगा। वैसे हमारे देश के संसद भवन में भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से हंगामा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि ED कहां है। तो इस मामले पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष गड़ियाली आंसू बहा रहा है, क्योंकि विपक्ष से कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वैसे तो सरकार हर मामलों की जांच, हर घोटालों की जांच ED से करवाती है, तो फिर राम मंदिर चोरी मामले में ED कहां गई। विपक्ष ने केंद्र सरकार से ये सवाल भी किया और कहा कि सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती उल्टा तिरंगा पकड़कर धरने पर बैठी तो काफी कंट्रोवर्सी हुई, ट्रोल भी हुई वो सोशल मीडिया पर। धारा 370 की बहाली की मांग को लेकर जब वो विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तो उन्होंने तिरंगा झंडा ही उल्टा ले रखा, देख सकते हैं आप, नारंगी कलर नीचे ग्रीन ऊपर है। जम्मू के श्रीनगर में वो बोली कि 5 अगस्त नहीं भूल सकते, क्योंकि यही वो दिन था जब जम्मू से धारा 370 को हटाया गया। 5 अगस्त 2019 में। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में ये बदलाव हुआ। वहीं राहुल गांधी बोले कि आरएसएस इतिहास बदलने की कोशिश कर रहा है, इनके पीछे एक खतरनाक विचारधारा है, लेकिन देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार और आरएसएस पर ये गंभीर आरोप लगाए। और खबर देखिए, 7 साल में 274 भगोड़े भारत लाए गए। सरकार बोली कि 36 देशों से प्रत्यर्पण हुआ और इनसे लगभग 18,000 करोड़ की संपत्ति भी अटैच हुई, जिसमें 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता को भी अमेरिका से भारत लाया गया है। और खबर देखिए, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि अनशन करो, लाठी खाओ, फिर इस्तीफा दूंगा। तो पहले तो उन्होंने इस तरह का विवादित बयान दिया और फिर उन्होंने कहा कि बयान गलत तरीके से पेश किया गया। भाजपा बोली कि परीक्षा में गड़बड़ी का मजाक उड़ाया गया है। वहीं देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम आवास तक मार्च निकाला तो पुलिस ने उनको रोका। फिरोज शाह रोड पर धरने पर बैठे और बोले कि E20 पेट्रोल के खिलाफ 2 लाख से भी ज्यादा चिट्ठियां भिजवाई गई हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की तरफ से E20 एथेनॉल पेट्रोल मिश्रण को लेकर ये सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं खबर देखिए, झारखंड की राजधानी रांची में भी जेपीएससी और जेएसएससी पेपर लीक मामलों को लेकर पिछले 10 दिन से छात्रों का प्रदर्शन जारी है। जैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था ना, वैसा ही आंदोलन अभी रांची में चल रहा है। 10 दिनों से स्टूडेंट धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक भी हेमंत सरकार ने आंदोलनकारियों से बातचीत नहीं की है। अभी इस आंदोलन को सीजेपी ने भी सपोर्ट दिया है और कल 6 अगस्त को तो आंदोलनकर्ताओं की तरफ से विधानसभा घेराव की भी चेतावनी दी गई है। इतना ही नहीं, आंदोलनकारियों का कहना कि इस आंदोलन को बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात समेत कई राज्यों से छात्रों और सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। और कुछ ऐसा ही आंदोलन विरोध प्रदर्शन बिहार में भी देखने को मिला। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों के प्रदर्शन पर वाटर कैनन से प्रहार किया गया, लेकिन इस पर छात्रों ने डांस किया, बैरिकेटिंग तोड़ी, सड़कों पर लेटे, उन्हें पुलिस उठा कर ले गई, मुख्यमंत्री हाउस घेरने निकले थे। बिहार पटना में भी पेपर लीक और रोजगार की मांग को लेकर अब मुख्यमंत्री आवास घेर रहे हैं, छात्र ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन एक बार फिर से एयर इंडिया के विमान में बड़ी ट्रेजेडी हो गई। एयर इंडिया की फुकेट और दिल्ली की फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई, जिसमें 17 पैसेंजर यात्री घायल हो गए। एक पैसेंजर ने बताया कि विमान 3 मिनट तक हवा में पलटी खाता रहा, कई लोगों के पैर और कंधे में चोट की घटनाएं भी देखने को मिली है। हालांकि गनीमत रही कि किसी भी पैसेंजर की जान नहीं गई और पायलट ने स्थिति को संभाल लिया और प्लेन को सुरक्षित उतार दिया। और खबर है, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग रोकने की तैयारी की जा रही, प्रवासी मजदूरों के लिए अब क्लस्टर बनेंगे, थाने में देनी होगी जानकारी। 4 दिन पहले जो 2 हत्याएं हुई थी उसके बाद प्रशासन की तरफ से ये नई रणनीति बनाई गई है। और देखिए, हमारे देश में बढ़ती डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक म्यूल अकाउंट्स पर एसओपी बनाए और केंद्र सरकार भी मुआवजे और राज्य सरकार फ्रॉड रोकने का तंत्र लागू करें। आए दिन हमारे देश में डिजिटल अरेस्ट के स्कैम बढ़ रहे हैं और इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सभी राज्यों और केंद्र सरकार को। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, बीते दिन बिहार बंगाल में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौतें हो गई पिछले 12 से 24 घंटों के दरमियान। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड की घटना भी हुई, जिसमें 200 यात्री फंसे हुए हैं। हरियाणा के भी अंबाला, झज्जर समेत कई इलाकों में सड़कें मानो तालाब से बन गई, इतनी भारी बारिश हो रही है। देश भर में बारिश की वजह से कई राज्यों में आम लोगों का जीवन प्रभावित है। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश में 6 अगस्त के बाद यानी कल से फिर से बारिश तेज होगी, लेकिन तब तक अगले 1-2 दिन हैवी रेन का अलर्ट नहीं है। वैसे MP में इस मानसूनी सीजन में औसत से अब तक 16% तक कम पानी गिरा यानी कम बारिश हुई है। आज 5 अगस्त को भी वैसे हल्की फुल्की बारिश की चेतावनी तो पूरे MP में है ही, और कल 6 तारीख को कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट की भी चेतावनी है, ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। वहीं बात करें राजस्थान की तो देखिए, कोटपुतली में गाड़ियां फंसी, पेड़ टूटे, अजमेर में 2 घंटे हाईवे जाम रहा, अलवर भरतपुर में 2 इंच से भी ज्यादा बरसात हुई। राजस्थान में भी मानसून वैसे अभी एक्टिव है, लेकिन मौसम विभाग का कहना कि अब 7 अगस्त को राजस्थान के इन पूर्वी हिस्सों में बारिश की चेतावनी है, तब तक मानसून थोड़ा कमजोर रहेगा ऐसा। और अब देखिए, छत्तीसगढ़ में रायपुर भिलाई में तेज बारिश हुई, एक जगह सोसाइटी में पानी भर गया, महानदी में बहे मछुआरे का शव 8 दिन बाद मिला। और छत्तीसगढ़ में भी एक बार फिर से अब जाकर मानसून एक्टिव हुआ है आज से, तो लगभग सभी जिलों में बारिश की चेतावनी है। हरियाणा राज्य में भी 12 जिलों में बारिश चल रही है। यमुना में मिनी फ्लड यानी हल्की फुल्की बाढ़ का माहौल है। कई जगहों पर मौसमी घटनाओं में कुछ लोगों की मौतें भी हो गई। और ये बिहार की तो घटना देखिए आप, सासाराम में सेल्फी ले रहे 3 दोस्त तेज बहाव में फंस गए। पड़ोसी देश नेपाल में भी भारी बारिश की वजह से अररिया में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। बिहार के रक्सौल में सड़क बही, दरभंगा औरंगाबाद में बारिश भी हुई, कई जगहों पर नदियां भी ओवरफ्लो हो रही है। मानचित्र में आप देख सकते हैं अभी पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग ने। और बिहार में भी ठनका गिरने से यानी बिजली गिरने से 3 जिलों में 7 लोगों की मौत हो गई पिछले 24 घंटों में। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यूपी में भी जोरदार बारिश बारिश चल रही है। एक छाते के नीचे निकले केशव और ब्रजेश, मथुरा में बाइक स्कूटी डूबी, शामली में भी सड़कें मानो नदियां से बन गई, इतनी तेज बारिश और जल भराव देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग की तरफ से। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए उत्तराखंड के देहरादून में उफान में कार फंसी, गंगा नदी वार्निंग लेवल पर बह रही है, टिहरी उत्तरकाशी समेत 5 जिलों में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी देखने को मिली है। उसके बाद जेसीबी वगैरह से मलबे को हटाया गया, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के लगभग 10 जिलों में 110 सड़कें बंद पड़ी हैं अभी लैंडस्लाइड की वजह से। और अगले 3 दिन 5 अगस्त 6 और 7 अगस्त को उत्तराखंड में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, इस बारे में जानकारी भी आप चेक कर सकते हैं। और ठीक ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में भी शिमला में भारी बारिश के बीच चलती बस पर गिरा पेड़, एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। कांगड़ा सिरमौर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। आज 8 बजे तक सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की है मौसम विभाग ने। आज 5 अगस्त को हिमाचल के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है भारी बारिश को लेकर। अगले 4 दिन तक हिमाचल प्रदेश में मौसम का हाल कुछ यूं रहने वाला देख सकते हैं आप। और इस बीच देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा देख सकते हैं आप। असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, इन पूर्वी भारत के राज्यों में रेड अलर्ट है और कुछ कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है। येलो अलर्ट उत्तरी भारत, मध्य और कुछ दक्षिणी भारत के राज्यों में है। हालांकि एक ग्रीन जोन वाले राज्यों में अभी एक दो दिन मौसम मानसून कमजोर रहेगा ऐसा। अच्छा वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है, कमेंट करके बताएगा जरूर मुझे आपके राज्य और जिले का नाम। ओके और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए लगातार दूसरे दिन आखिरी 15 मिनट में चढ़ा शेयर बाजार, क्लोजिंग टाइम पर निफ्टी 185 अंक तक चढ़ा है। हालांकि बीते दिन सेंसेक्स 210 अंक गिर कर 78,428 पर बंद हुआ, निफ्टी भी 150 अंक गिरावट में रहा। वहीं खबर है सरकार एलआईसी में बेचेगी 6.5% तक हिस्सेदारी, ओएफएस के जरिए बिक्री होगी। और देखिए एप्पल के ऐप स्टोर पर वापस टेलीग्राम का ऐप आ चुका है, पहले पेज नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा था। वहीं टाटा कंपनी की दरिया दिली, देखिए टाटा ग्रुप बनाएगा 50 हॉस्पिटल्स और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, टाटा के चेयरमैन नोएल टाटा की तरफ से रोड मैप भी पेश किया गया, भारत के लिए ये हॉस्पिटल वगैरह बनाए जाएंगे। और खबर है इथेनॉल से बिजली भी बनेगी, अब बिना ग्रिड कनेक्शन के चार्ज होगी इलेक्ट्रिक कारें, भारत में लॉन्च हुआ नया ईवी चार्जिंग सिस्टम। जी हाँ अब बायो इथेनॉल से चलेगा मोबाइल ईवी चार्जर। तेलंगाना में हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में ये नई टेक्नोलॉजी का चार्जिंग तकनीक पेश किया गया, देख सकते हैं आप इस तकनीक के बारे में ज्यादा जानकारी भी है। और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो इथेनॉल को लेकर अपने आंदोलन के दरमियान सरकार पर ये भी आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका से इथेनॉल आयात करने के दबाव में E20 नीति लागू कर रही है केंद्र सरकार। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब में ISI समर्थित आतंकी मॉड्यूल का बड़ा भंडाफोड़ हुआ, रेलवे ट्रैक पर सीसीटीवी लगाकर रेकी करने वाले 9 लोगों को अरेस्ट किया गया, आरोपियों से पेट्रोल बम भी बरामद हुए हैं, सुरक्षा एजेंसियों को ये बड़ी सफलता मिली है। वहीं खबर है पीएम ई ड्राइव योजना के तहत देश भर में ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और खबर देखिए नीट यूजी में अब ओएमआर सीट पर भी बवाल मचा, 6 छात्र पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ओएमआर सीट में नंबरों में हेरफेरी को लेकर। वैसे विद्यार्थियों के आंदोलन को लेकर भी अब बयान सामने आ रहा, बॉलीवुड एक्ट्रेस का कहना कि विरोध का अधिकार है छात्रों को लेकिन मर्यादा भी जरूरी है। छात्र प्रदर्शन पर एक्ट्रेस सुरभि चंदना और करण शर्मा ने यह नसीहत दी। और खबर देखिए अब हेयर कट, भोजन और मंत्रियों विधायकों के भत्तों पर भी रोक लगेगी, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और वित्तीय साल के बजट में सरकार ये बड़ा फेरबदल करने जा रही है, इस तरह के भत्ते वगैरह अब विधायक मंत्रियों को नहीं दिए जाएंगे। वहीं खबर है राजस्थान में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का बड़ा असर दिखा, 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मिला 2,00,000 करोड़ रुपए का ऋण। राजस्थान में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर सरकार ने ये आंकड़े जारी किए। और खबर है उत्तर प्रदेश में दौड़ेगी नमो भारत रैपिड रेल, लखनऊ अयोध्या समेत 5 शहरों में यह सुविधा मिलेगी, जल्दी रेलवे की तरफ से नया कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। और उत्तराखंड में इस बार यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटा, 3 अगस्त तक 6.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं जनगणना 2027 के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी हो चुका है, पहाड़ी क्षेत्रों में 1 सितंबर से गणना होगी, 17 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ये जनगणना होनी है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह इन पहाड़ी क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर वगैरह में, और 1 से 5 अक्टूबर तक डेटा वेरिफिकेशन किया जाएगा। और खबर देखिए साल 2028 से गाड़ियों को लेकर नया नियम लागू होगा, गाड़ी में V2V सिस्टम अनिवार्य होगा जिससे सड़कों पर दौड़ रही हर गाड़ी की डिटेल मिलेगी। बेसिकली सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो गाड़ियां खुद एक दूसरे से बात कर पाएगी, अगर कोई दूसरी गाड़ी अचानक से नजदीक आ जाती तो एक्सीडेंट होने से पहले ही अलर्ट मिल जाएगा, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। इस तरह की आधुनिक तकनीक V2V कम्युनिकेशन सिस्टम जो है आने वाले समय में सभी गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। ऑटोमोबाइल कंपनियों को केंद्र सरकार ने ये सख्त निर्देश जारी कर दिया है जिससे सड़क हादसों की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और देखिए केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि पीएम सूर्य घर योजना से 19 लाख परिवारों का बिजली बिल बिल्कुल जीरो हुआ है, सोलर एनर्जी की वजह से लोगों को बिजली बिल में राहत मिली है। और मध्य प्रदेश में मेडिकल एडमिशन पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया, अब निजी कॉलेजों में नहीं लौटेगा 35% मैनेजमेंट कोटा, आज 5 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, 81 साल की महिला को 24 साल के युवक से हुआ प्यार, एयरपोर्ट पर पहली मुलाकात का उनका यह वीडियो भी सामने आ रहा, देख सकते हैं आप ये वीडियो, क्योंकि इन दोनों की उम्र का फासला बहुत ज्यादा है, फ्रांस की रहने वाली महिला, तो इसलिए इनके रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी हो रही है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए, ईरान में विदेश मंत्री अराकची को हटाने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति पजकियान की ताकत भी घटी और सुप्रीम लीडर की इस्लामिक फोर्स अब ज्यादा पावरफुल हुई ईरान में। अमेरिका ईरान जंग के बाद ईरान के प्रशासनिक व्यवस्थाओं में ये बड़ी फूट देखने को मिल रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, यमन के पास एक भारतीय जहाज पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया। विस्फोटकों से लदी इस तरह की एक बोट टकराई, इस वजह से यह जहाज भी डूब गया। हालांकि गनीमत रही कि इसमें सवार सभी 13 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। इसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह स्टेटमेंट भी दिया गया, देख सकते हैं। और भारत के विदेश मंत्रालय का यह भी कहना कि 2 भारतीय अब भी लापता है। यूक्रेन में जहाज पर एक हमले को लेकर विदेश मंत्रालय ने सख्त बयान दिया। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हुए जहाज पर हमले को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने यह सख्त हिदायत दी है। और खबर देखिए, दुबई से रिपोर्ट होकर भारत लाया गया कौशल बम्बिहा गैंग का गुर्गा गौरव गडोली। वहीं राम मंदिर चरावा चोरी मामलों की जांच अब 12 जिलों तक पहुंची। और जम्मू कश्मीर में आज काला दिवस मनाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 समाप्त करने के 6 साल पूरे होने के मौके पर जम्मू कश्मीर में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के बैंक खातों और लॉकरों की भी SIT जांच ऑडिट शुरू हुई है। जो नई SIT टीम जांच कर रही है, इसमें इन चीजों की भी ऑडिट की जा रही है। और खबर देखिए, साउथ कोरिया में इस सप्ताह सबसे ज्यादा गर्मी का रिकॉर्ड 3 बार टूटा। अब तक गर्मी की वजह से 16 लोगों की मौत हो चुकी है दक्षिण कोरिया में। और अफ्रीका में एक बड़ा भीषण हादसा हो गया, एक यात्री वैन और ट्रक की टक्कर में 14 लोगों की मौत हो गई, चालक की लापरवाही भारी पड़ी है। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, बिहार में परिसीमन का नया फॉर्मूला लागू होगा। अब 50% से ज्यादा SC ST और OBC आबादी वाले गाँव में बनेगा पंचायत मुख्यालय। बिहार में पंचायती राज विभाग की तरफ से इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। और CBSE ने एक बड़ा फैसला लिया, सभी स्कूलों में खुलेगी NSS की यूनिट। छात्रों को कम उम्र से ही मिलेगा समाज सेवा का मौका भी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से इस बारे में ये नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं खबर है, हरियाणा राज्य में 9 से 17 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। यात्राओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गूंजेगा प्रदेश। और देखिए, उत्तराखंड सरकार ने विजन 2047 उत्तराखंड का विकसित राज्य बनाने के लिए हर जिले के लिए दिसंबर 2026 तक विकास की विस्तृत कार्य योजना बनाने का निर्देश भी दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से उत्तराखंड में 5 करोड़ की नई विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। वहीं खबर है, अब उत्तराखंड में लोगों को मोबाइल पर ही आपदा का सटीक अलर्ट मिल पाएगा। उत्तराखंड में शुरू हुआ स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, NDMA द्वारा सचेत प्लेटफॉर्म से जुड़ा यह सिस्टम है, जो लोगों को बाढ़, भूस्खलन, इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी पहले ही दे देगा। वहीं देखिए, पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। विज्ञापनों के खर्च पर रोक लगा दी, 15 दिनों में कर्मचारियों का DA चुकाने का भी आदेश दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में यह बड़ा फैसला सुनाया। और खबर है, दिल्ली के भारत मंडपम में कल 6 अगस्त से लगेगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटवेयर मेला, जिसमें चीन, ताइवान समेत कई विदेशी कंपनियां भी शामिल होगी। और दिल्ली में अब रूफटॉप सोलर पैनल लगाना भी आसान और सस्ता होगा। सरकार 5 साल की प्रोत्साहन राशि एडवांस में भी दे रही है PM सूर्यगर्म मुक्ति योजना के तहत। वहीं देखिए, दिल्ली NCR में प्रदूषण पर भी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि देश भर की हवा बिगाड़ रहे हैं ट्रक और बसें। इस तरह के कॉमर्शियल व्हीकल से जो भारी वाहन है, इनसे 79% तक पॉल्यूशन फैलता है, यानी प्रदूषण में 79% हिस्सेदारी इनकी होती है ऐसा। और खबर है, दिल्ली के 4 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भी लागू होगा पार्किंग कम स्टेकिंग मॉडल, पार्सल सेवा अधिक व्यवस्थित होगी अब। वहीं उड़ीसा सरकार ने भी आदेश जारी किया, स्कूलों में वंदे मातरम के बाद गाया जाएगा जनगणमन। राज्य सरकार ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया केंद्र सरकार के फैसले के बाद। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाने वाली ज्ञानेश्वरी यादव को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा तोहफा दिया, बनेंगी आउट ऑफ टर्न DSP। वहीं यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 13 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले किए गए। और यूपी में 8,500 करोड़ की लागत से बनेगा 6 लेन जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, जिससे नोएडा एयरपोर्ट तक का सफर भी आसान होगा। और उत्तर प्रदेश में 700 करोड़ से सुधरेगी ब्लॉक मुख्यालयों की कनेक्टिविटी भी। सड़कों के चौड़ीकरण के लिए बजट की भी सौगात दी है यूपी की योगी सरकार ने। वहीं यूपी के 8 जिलों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा मिला, प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण गठित किया गया है इन जिलों के विकास के लिए। CM योगी की कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। और एक अच्छा फैसला देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हर श्रमिक की तनख्वाह का 50% अब मूल वेतन होगा। योगी कैबिनेट बैठक में यह भी फैसले को मंजूरी मिल चुकी है। और यूपी में CM किसान कल्याण योजना भी शुरू करने जा रही योगी सरकार, एग्रीकल्चर के लिए 232 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर हुआ। देख सकते हैं आप इस योजना के बारे में ज्यादा डिटेल्स भी। वहीं देखिए, अयोध्या के विघ्नेश्वर धाम में देश का सबसे बड़ा महात्रिशूल स्थापित किया गया। इस त्रिशूल की ऊंचाई 60 फीट है, 365 पुजारियों ने इसका पूजन भी किया। और यूपी के सरकारी टीचरों पर भी बड़ी कार्यवाही की गई, अब बहाने नहीं चलेंगे, डिजिटल हाजिरी न लगाने वाले टीचरों की सीधी सैलरी काटी जाएगी, तनख्वाह कटेगी। इस बारे में योगी सरकार की तरफ से सख्त निर्देश भी जारी कर दिया। और यूपी सरकार का एक और बड़ा औद्योगिक दांव देखिए, यूपी सीडा के बजट में भारी बढ़ोतरी की गई। अयोध्या और फतेहपुर में नए इंडस्ट्रियल जोन को भी हरी झंडी मिली है। वहीं यूपी बनेगा टेक नवाचार का नया हब, लखनऊ और नोएडा में यू हब स्थापित करने के फैसले को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। और यूपी में किसानों को फसलों के नुकसान पर भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी योगी कैबिनेट में। इससे जुड़ी भी फसल बीमा योजना को हरी झंडी दी गई। यूपी के विधानमंडल सत्र में एडेड स्कूल सेवानिवृत्त शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा पर भी योगी सरकार विचार करेगी। विधान परिषद में इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई, विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया। और भी यूपी की योगी कैबिनेट के कुछ फैसले देखे, जैसे जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेस वे, मजदूरों को दोगुना ओवरटाइम मिलेगा, मदरसों की कामिल फाजिल डिग्री पर रोक लगेगी। तो ये तो यूपी से जुड़े कुछ अपडेट्स रहे, और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, राजस्थान में जमीन और घर खरीदना और महंगा होगा। 4 महीने में दूसरी बार डीएलसी के रेट्स बढ़ाने जा रही है राजस्थान सरकार। 5 से 49% तक अलग अलग जिलों में यह बढ़ोतरी की गई है। और एक बड़ी साइबर ठगी की घटना देखिए, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का यह मामला है। कस्टमर केयर बनकर कॉल किया, क्रेडिट कार्ड केवाईसी के नाम पर ठगी की, व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजकर डाउनलोड करवाई। तो ऐसे ठगों बदमाशों से भी सावधान रहे आप। और देखिए, मध्य प्रदेश में अब पटवारियों पर सीधे एफआईआर नहीं होगी, बल्कि पहले प्रारंभिक जांच होगी, उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी। वहीं मध्य प्रदेश में निजी विद्यालयों के संचालन के लिए भी नई गाइडलाइन जारी हुई। स्कूल शिक्षा विभाग स्टूडेंट के आधार पर कराएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, 2 लाख तक का जुर्माना भी लगेगा। और मध्य प्रदेश में लगभग 7,000 टीचर्स का वेतन भी बढ़ेगा। जुलाई 2023 से ही बढ़ा हुआ वेतन का फायदा मिलेगा। किसानों को बैंक फ्रॉड से बचाने के लिए कवच योजना भी शुरू की गई, और 100% रिजल्ट वाले स्कूलों को 5-5 लाख रुपए का अलग से बजट भी दिया जाएगा। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। और देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार होगी हॉकी लीग। खेलों को बढ़ावा देने के लिए 157 करोड़ की नई योजनाएं शुरू करने जा रही छत्तीसगढ़ सरकार। और खबर है, दिल्ली में टीबी मुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन बनाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनप्रतिनिधियों से अपील भी की है। हरियाणा राज्य में 9 से 17 अगस्त तक निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि 7 गोल्ड जीतना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। और पंजाब विधानसभा में E20 पेट्रोल के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि 67% गाड़ियों का माइलेज घटा, 47% इंजन खराब हुए, 45,000 वाहनों पर यह स्टडी की गई। वहीं पंजाब चुनाव से पहले SIR पर भी बड़ा अपडेट आ रहा। 4 लाख से ज्यादा वोटर्स लापता है, जबकि 6.25 लाख की मौत हो चुकी है। करीब 1.25 लाख डबल मतदाता मिले और 20 लाख फॉर्म वापस भी नहीं आए। वहीं पंजाब में सरकारी बसें चलना वापस शुरू हुआ। PRTC पनबस कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई। और पंजाब में जो सफाई सेवक भी हड़ताल पर थे, तो उनकी भी हड़ताल अब खत्म हुई। 24 घंटे में सारे शहर साफ होंगे। और हरियाणा में देखिए, AI और हाई रिजोल्यूशन मैपिंग से होगी निगरानी। 5 शहरों में 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का डिजिटल मैप तैयार हुआ। और हरियाणा में ऐसे कर्मचारियों की प्रमोशन पदोन्नति पर भी सरकार ने रोक लगा दी है। आरक्षण की बजाय अब वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होगी। वहीं देखिए, उत्तराखंड में हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेस वे बढ़ाने के लिए 5700 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ। और खबर देखिए, केरल में भारी बारिश बनी आफत। पिछले 24 घंटों में 25 लोगों की मौत हो गई, 18,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में आए। मेटा कंपनी पर केंद्र सरकार अब सख्ती बरतने जा रही है। CSAM और व्हाट्सएप यूजर नेम पर देना होगा जवाब। आज अहम बैठक हो सकती है मेटा और भारत सरकार के बीच। और महंगाई पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, त्योहारों से पहले हमारे देश में महंगाई बढ़ी है। चीनी, चावल, इस तरह की खाने पीने की चीजों के दाम 5% से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। एक तो कमजोर मानसून और जमाखोरी के अलावा और भी इन कुछ कारणों की वजह से महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं भारत में ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान पर भी रिपोर्ट आ रही है कि पिछले साल 2025 में रिकॉर्ड तोड़ 20,138 अंग प्रत्यारोपण हुए हैं। 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली है। और खबर है, अब रात 12 बजे तक कर सकेंगे स्पीड पोस्ट। खुले रहेंगे शहर के डाकघर। यूपी आगरा में ये नई पहल की जा रही है। रविवार को भी पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड बनेगा। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्रावधान रखा है और योगी सरकार ने यह बड़ी घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश सरकार की नई स्वास्थ्य बीमा नीति में शामिल होंगे 10 लाख परिवार। 2 महीने में यह नीति लागू करने की तैयारी की जा रही है। और देखिए, उल्लास योजना के तहत जम्मू कश्मीर भी बना पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश। हरियाणा के युवाओं के लिए घर बैठे कमाई का मौका। हरियाणा सरकार युवाओं को देगी निःशुल्क होम स्टे ट्रेनिंग। और इस योजना के लिए युवा आवेदन कर सकते हैं। 16 अगस्त तक के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और हरियाणा सूचना आयोग ने भी बड़ा फैसला लिया। DITS अब RTI के दायरे में आएगा, नहीं छिपा सकेंगे सूचनाएं वगैरह भी। वहीं राजस्थान में 3 प्रदूषित नदियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से 20 सूत्रीय स्थायी समाधान मांगा। और छत्तीसगढ़ राज्य में भी UCC लागू करने की कवायद तेज हुई आम जनता से। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस कानून को लेकर 15 अक्टूबर 2026 तक सुझाव भी मांगे हैं। वहीं एजुकेशन पर अपडेट देखिए, यूपी TGT और PGT भर्ती का नया सिलेबस जारी हुआ। पहली बार इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। संस्कृत में भी संशोधन किया गया है। ये 5 नए नियम लागू होने जा रहे हैं यूपी TGT PGT में। और देखिए, झारखंड में भी पिछले 11 दिनों से सड़कों पर उतरे हुए हैं छात्र, युवा आंदोलन कर रहे हैं। अब आमरण अनशन की चेतावनी दी। JPSC और JSSC अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर की तरह आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। झारखंड राज्य में ये आंदोलन हो रहा है। और खेल जगत से खबर है दोस्तों, नीरज चोपड़ा 21 अगस्त को लुसाने डायमंड लीग में उतरेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने सिल्वर जीता था। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, वृश्चिक राशि वालों को प्रमोशन की खबर मिल सकती है और मीन राशि वालों के लिए भी आज निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कर्क रेखा भारत के
ऑडियो को पसंद करने के लिए और आगे भेजने के लिए 5 दबाएं। इसका ऑडियो आईडी नंबर आपको एसएमएस कर दिया जाएगा।